पूर्णिमा का पर्व बहुत बड़ी अहमियत रखता है। चाहे वो किसी सेक्ट के लोग हो, हर जगह गुरु पूर्णिमा एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हम लोग भी हमेशा से गुरु पूर्णिमा मनाते चले हैं। और हर शख्स को अपने गुरु से एक अजब शक्ति प्राप्त होती है। अगर वो बाखबर है तो उसको महसूस करेगा, बेखबर है तो असर करेगी लेकिन वो महसूस नहीं करे। हमारे गुरुदेव बीमार थे, बिस्तर से उठे नहीं थे, और गुरु पूर्णिमा के दिन आप एकदम से उठ के बैठ गए। जो फोटो आप देखते हैं गुरु पूर्णिमा ही के दिन का, वो करीब 6 महीने से बिस्तर से नहीं उठे। तो हर शख्स को गुरु से एक शक्ति प्राप्त होती है और जो बाखबर लोग हैं वो उसे महसूस करते हैं, बेखबर लोग महसूस नहीं करते लेकिन उसका असर कायम रहता। मोटी मोटी जो हिदायतें, जो शिक्षाएं हमारे बुजुर्गों ने दी हैं अपने मत के बारे में, वो इन शॉर्ट ये है, जिस मत को हम लोग मानते हैं उसको मत संत मत नाम। ये संतों के आशीर्वाद से चलता है। हम लोग का जो संत मत है ये परम पूज्य लाला जी महाराज साहब द्वारा चलाया गया। इसके केवल एक मालिक थे, वो परम पूज्य लाला जी महाराज। आपने इस मत का एक बड़ा छोटा सा लक्ष्य रखा, ये ईश्वर ने हम सबको मनुष्य पैदा किया, ये उसकी दया है। हमारे पिछले जन्म के संस्कार हैं, कर्म हैं, इसलिए हमें मनुष्य योनि उसकी दया से मिली। हर मनुष्य का, चाहे वो किसी जात का हो, किसी बरादरी का हो, उसका धर्म ये है एक अच्छा मनुष्य बने। और अच्छा मनुष्य बन के एक मुकम्मल इंसान बने। मुकम्मल इंसान बनने के बाद अपनी असल मंजिल यहाँ के इच्छाओं की जेब खाली वहां तक पहुंचे। अच्छा मनुष्य वो है जिसमें कुछ ईश्वरी गुण है, सब नहीं है, कुछ ईश्वरी गुण है। ईश्वर के बहुत से गुण हैं, अगर उनको सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये छह मुख्य गुण हैं: दान, दया, दीनता, क्षमा, सच्चाई और प्रेम। तो अगर कुछ गुण हो गए, आपने जैसे दान करना शुरू किया, आप दयालु बन गए, तो आप अच्छे मनुष्य हो। और इसी आधार पर ईश्वर के नाम भी हैं: दया निधान, कृपा निधान, दीनानाथ, करुणा सागर, सच्चिदानंद, प्रेम स्वरूप। जितने ईश्वर के नाम हैं वो इन्हीं छह शब्दों के अगल बगल में रखते, ताकि हमें उनके नामों को देख के उनके गुणों को। ईश्वर अपने नाम के लिए हमारे आपके भूखा नहीं है, उसका नाम हमेशा चला है, चलता रहेगा। हम आप उसके प्रेम और आशीर्वाद के पूछे। हर मनुष्य को दहेज में छह अवगुण मिले मनुष्य शरीर के: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार। इनको छोड़ना है और ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करना है। अगर आपने सब ग्रहण कर लिए तो आप मुकम्मल इंसान बन गए। मुकम्मल इंसान बनने के बाद भी अगर आपकी इच्छा है कि हमें कोई चीज प्राप्त हो, मोक्ष हो, स्वर्ग हो, तब भी नहीं, तमन्नाओं की जेब खाली करनी। गांधी जी ने लिखा है कि आपको अपनी इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी। इच्छाओं को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, इच्छाओं की मौत नहीं। परम पूज बाबू जी महाराज साहब ने, जो भी लाला जी महाराज से लोग वास्ता रखते थे, उनने जगह जगह उनका दास बन के, नौकर बन के उनको नाम को चलाया। और परम पूज बाबू जी महाराज साहब ने गाजियाबाद में इस सिलसिले को कर दिया। एक चीज याद रखिए, कहना चाचा जी महाराज साहब की, मालिक वो है, नौकर हम। मालिक एक है और वो सिवा लाला जी महाराज साहब के कोई भी नहीं। बाबू जी महाराज साहब ने इनको अचीव करने के तीन तरीके बताए: थिंक गुड, डू गुड, बी गुड। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे बन जाओ। यही गांधी जी के तीन फार्मूले थे: अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। यही उनके तीन बंदरों के नाम से मशहूर हुए। उनका या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, या तो वो तुम्हें मानने लगे और या तुम उसको फिजूल की बातें छोड़ कर लगलपट के अपना काम बना लो। बची हुई जितनी चीजें हैं वो सब फिजूल की, जिससे कोई वो नहीं, समय का नष्ट करना। परम पूज्य बालजी महाराज साहब की बातचीत से पहले उस आपके सिलसिले की जिम्मेदारी भाई साहब पे हम थे। भाई साहब भी जब तक आखिरी सांस तक रहे तब तक वो उनका काम करते और सबको बड़े प्रेम से जुड़े। इसका तरीका जो हमारे गुरुदेव ने बताया उससे सहन हमें कोई नहीं लगा। बेटे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम खाली हमारी शक्ल का ध्यान करते रहो, हमारे रूप का ध्यान करते रहो, खाना खाओ तब भी ध्यान करो, इम्तहान दो, चलो फिरो, जो भी हो, इसके अलावा कोई चीज उन्हें नहीं बताई कि कुछ करना है। जब कभी कहते थे तो पूछते थे तो हंस के कह देते थे, बेटे ये तो ससुर सब बेवकूफ है जिन्हें बता देते हैं तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, हम कर रहे हैं। सच्चाई यह थी कि उनसे गुरु शिष्य का रिश्ता ही नहीं था, बस एक ऐसा प्रेम था जिसका कारण भी नहीं समझ में आता था और था, है और रहे। वो को उनके गुजरे हुए आखिरी साल उन्होंने कहा, बेटे अब हमारी शक्ल का ध्यान छोड़ के ओम का जाप किया और हर सांस में ओम को, उनका सब शक्ल चले नहीं, वैसे तो असल वही है लेकिन यह है हमारी सब बीमारियां ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हम कहें। उनका अब हमारी आदत पड़ गई है सब, बगैर उसके हम रह ही नहीं सकते। कुछ देर आपने आंख बंद की, फिर बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये भी करते रहो, बीमारियां तो सब होंगी बेटे तुम्हें, डायबिटीज भी होगी, ब्लड प्रेशर, लेकिन मेरी उम्र तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। राजा साहब यही दो शक्ल करते रहे कि हर वक्त उनकी शक्ल का ध्यान करते थे, ओम का जाप करते। सच्चाई यह है दोनों होते हुए भी हमें, क्योंकि अब 77 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। और लिविंग एग्जाम्पल है, दो बढ़ते फ्रैक्चर होने के बाद भी हड्डी जुड़ गई, डायबिटीज वालों की वो नहीं है। जो जो चीजें उनने कही उन्होंने कहा, देखो बेटे अगर हमारे साथ रहोगे, हमारा ख्याल रहोगे, तुमसे माया नहीं हमला करेगी, नाम का जाप होगा, एक बढ़ते एक बुजुर्ग ने शैतान से पूछा कि तुमने हमारे शिष्य को क्यों दबोच लिया। तो उसने कहा हमने नहीं दबोचा साहब, वो आपके ख्याल में नहीं था। और उसने जवाब दिया खुद खुशी बुलबुल आके जाल में, क्या खता सही याद की, जब वो खुद दुनिया में आके फंस रहा है तो मेरी क्या खता। और जब भी गुरु आपके साथ नहीं होगा इस भवसागर को कोई तर नहीं सकता। कितने ही बड़े अभ्यासी हो, कितने ही बड़ा हो। और यही वो कहते थे बेटे मन के चक्कर में मत पड़ना, ये बड़ा धोखेबाज है। तो उसके चक्कर में फंसो जो तुम्हें धोखा नहीं देगा, और वो सिवा तुम्हारे गुरु के छोड़ के और कोई गुरु नहीं। तो जब कभी गलतियां होती थी तो फौरन पूछते थे अच्छा बेटे जब ये गलती हुई तो ये बताओ उस वक्त तुम किस ख्याल में थे। मेरे ख्याल में थे, हमने कहा नहीं था, उन तो गलती होगी, अगर मेरे ख्याल में होते तो मैं जिम्मेदार होता, जब तुम मेरे ही ख्याल में नहीं हो तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल। और देखिए यही लक्ष्मण रेखा, जब लक्ष्मण जी गए हैं तो उन्होंने कहा माँ सीता से कहा, जो भगवान की पत्नी थी वो राम नाम की रेखा थी, किस रेखा से बाहर मत आइएगा। और देखिए उन्होंने उस रेखा को क्रॉस किया, उनका भी हरण माया छोड़ती नहीं। और इसीलिए शैतान कहता है खुद फंसी आके बुलबुल जाल में, क्या पता सही याद। तो जब हम ही आप उस जाल में फंसेंगे तो हम गुरु को क्यों रिस्पॉन्सिबल बने, अपने को देखें कि हम क्या करते हैं। धाबे से कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने गुरु के ख्याल में और उनका जाप लेता रहता है, कोई वजह नहीं इस भवसागर से निकल जाए। ये इसलिए कहते हैं कि परम पूज भावजी महाराज जिनसे आप सबका ज्यादातर लोगों का वास्ता है, उनने हर शख्स को लालाजी महाराज साहब के सुपुर्द कर दिया और उनने उन्हें कबूल कर लिया। दो चीजें हैं, और एक एक चीज उनकी सच्ची जितनी लिखी थी उनने एक एक बात सच्ची साबित की। बस एक भरोसा रखिए कि जब हमको उनने सुपुर्द कर दिया है तो हमारे ऊपर उन बुजुर्गों का हाथ है जिनकी तरफ माया नहीं छा सकती, लेकिन हमें अपना फर्ज पूरा करना पड़ेगा। हमें खाली यही कहते रहना तो हमें भी अपने फर्ज पूरे करने पड़ेंगे। हमारा फर्ज यही है कि उनके कहनों को हूबहू माने। कुछ मत पढ़िए, बस खाली बाबूजी की ये सब किताबें पढ़ लीजिए। इसमें भंडारे की हालतों से लिख के सब चीज उनने इन शॉर्ट में अल्टीमेटली यही है कि नाम और रूप का ख्याल रखिए और कुछ मत करिए। ये चक्र और ये सब चीजें बड़ी छोटी चीजें, इनसे कभी कभी अभिमान होता है, धोखा होता है। ये सबने अपनाया, और खेली खेल में जब हम लोग फिस्ट पर थे तो पैर दाब रहे थे, भाई साहब बाबूजी के दाब रहे थे हम। उनने अच्छा बेटे हमारा बेटा बड़ा होके क्या करेगा, कुछ ज्ञानी नहीं था, जिसको देखा डॉक्टर देखा, उनका कहा ताऊ जी डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने कहा हाँ भाई बेटे, अपने बेटे को हम डॉक्टर बना दिया। उन्होंने कहा अच्छा भाई श्यामलाल के बेटे को बना दो, नहीं ये रो रहा आएगा। फिर उन्होंने पूछा हाँ बेटे और बताओ और क्या करोगे। तो जो जो उनके कष्ट देखे थे उनके ताऊ जी खूब बड़ा मकान बनवाएंगे, बोले हाँ जरूर बनेगा। भाई साहब ने कहा तो उनका सेठ तेरा मकान नहीं बन सकता, क्योंकि आप बड़े छोटे मकान में शुरू किया था आप। अपने जीवन काल से, क्योंकि आपके पिताजी का बड़ा महल था काफी, जो आज भी बड़े महल के नाम से, आपने फौरन कहा चल भाई सेठ भी दुखी ना हो तो मकान तो इसका हो जाएगा लेकिन इसको बाप का मिल जाएगा। भाई साहब ने कहा बाबूजी पे हमारे कार है, उस वक्त बाबूजी कार थी, तो हमने कहा ताऊ जी आपका कार नहीं कार खरीद दीजिए। उनका नहीं बेटे बहुत महंगी मिलती है, हमारी औकात के बाहर है, लेकिन हमारा बेटा पहले खरीदेगा फिर सेठ खरीदेगा। इस बार गाड़ी खरीदी, भाई साहब की फाइनेंस अच्छी थी हमसे। अल्टीमेटली बहस होते होते ये हुआ कि साहब ये जो आप कपड़े पहने हुए हैं और ये आपकी गद्दी है अगर ये सख्त है हमें मिल जाए। उन्होंने कहा बेटे ऐसा ही होगा, इस अलमारी में जो तौलिया धोती और वो गद्दी जो उस वक्त थी, ये डेथ के बाद उनके शर्मा बहन जी लेती गई और शर्मा बहन जी के यहाँ से हमारे पास पहुंच। तो कोई बात भी तो आज तक हमने नहीं देखा जो गलत हुई, ये ऐसी थी जो जीवन में हम लोगों ने अपनी आंख से देखी। पैसे की दिक्कतें थी, आपने एक रूटीन उसमें बनाया बताया कि सब लोगों से कह दो कि राम संदेश एक किताब छपती थी जिसका चंदा 10 रुपये साल था कि मुफ्त में नहीं दी जाएगी, लिहाजा जो लोग को नौकरी मिल गई हो से चंदा लिया जाए और नहीं किताब बंद कर दी। ये एक जनरल था जो उनने कर दिया, जो उसके इंचार्ज थे उनने सबसे पहले हमारी और भाई साहब की बंद की। ये हर युग में हुआ, इसलिए बुरा माने ताऊ जी की भी लोग लालाजी जी के से शिकायत करते थे। जब लालाजी महाराज साहब की लड़की की शादी हुई तो उन्हीं के भतीजे ने जाके कहा कि साहब एक टोकरी कचौड़ी डॉक्टर श्री किशन अपने घर ले गए, ले जाने वाले डॉक्टर श्यामलाल हैं, बरात ज्यादा है भूखी रह जाए। ये उन्हीं के भतीजे थे, जलन ये थी क्योंकि उन लोग को ज्यादा मान। लाला जी महाराज साहब ने कहा कि अरे एक ले गए हमने तो उनसे दो ले जाने के लिए कहा था, तो एक आप अपने हाथ से भिजवा दीजिएगा। अब नेचुरली उनको सुस्ती आ गई सुन के। इधर ये लोग पहुंचे, उन्होंने साहब बरात ज्यादा आ गई है तो आपने कहा सब चादरों से ढक दो और हमारे ख्याल में बांटते रहो, ईश्वर चाहेगा कोई कमी नहीं, हमारी लाज उसके हाथ में। सब बरात ने खाना खा लिया, जब हम आए कॉलेज से तो उनका ताऊजी 3-4 महीने से राम संदेश नहीं पहुंचा, जो साहब भेजते थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने नन्हे का राम संदेश क्यों नहीं गया? तो उन साहब आप ही ने मना किया था, इनको नौकरी मिल गई, अच्छा हाउस जॉब था उस वक्त, आपने बहुत डांटा। हम कहा ताऊ जी आप कितना ही ड्रामा करें, हम चंदा नहीं दे सकते, इस जन्म में हम चंदा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा बेटे कौन कह रहा है, दुनिया में कोई तेरा राम संदेश नहीं रोक सकता, मैं भी चाहूं नहीं, तेरा राम संदेश आएगा तू चंदा दे ना दे, बात आई गई हो गई। हमका आप कहते रहिए हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, कहा ना गुरु शिष्य का कोई रिश्ता ही नहीं था, बात खत्म भी हो गई। 60 से राम संदेश बंद हो गया। 79 में जब शर्मा बहन जी की डेथ हुई तो उनमें मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा देखो भाई गुरुदेव ने इन राइटिंग दिया था कि शर्मा यहाँ रहेगी, हम लोगों ने इन्हें रहने नहीं दिया और हम तीन उसके जिम्मेदारी करेंगे, जिस पर रिटिन में सबके दस्तखत भी है, तीन दिन उनकी वसीयत है, हम इसमें फेल हो गए और ये काम भाई साहब ने किया है, लिहाजा सिकंदराबाद सत्संग की तरफ से उन्हें कुछ दिया जाए। होते होते यही तय हुआ कि सिकंदराबाद सत्संग की तरफ से वो ताज जिंदगी राम संदेश के मेंबर बन गए। तो देखिए उनकी डेथ 70 में हो गई। गुरु की कोई बात गलत नहीं होती और 79 से राम संदेश आने लगा, लेकिन बनमता आदमी गुरुमता हो ही नहीं सकता, उसमें दो तीन लोग थे, उनने कहा भाई देखो भाई साहब तो खाली ले गए, सेवा तो बहन जी ने की, तो उस पापा था वाइफ के नाम से, जब ताऊ जी महाराज साहब की बरसी मनाई गई तो सरदार जी भाई साहब ने पूछा कि भाई साहब आपके पास बराबर राम संदेश आ रहा है, आता बराबर था? हमने कहा हमारे पास नहीं आ रहा साहब। उन्हें बुलाया, हमने कहा हमारी बीवी के पास आता है साहब। तब से उन्होंने कहा सुनिश्चित करो, और वो अब्बाई हैंड भिजवाने लगे। तो जो मनमता आदमी होता है, जिसने गलत थिंकिंग हुई वो तो कभी राइट थिंकिंग में नहीं आता, चाहे कितना ही बड़ा अभ्यासी हो जाए। मन को जब कोई काबू में नहीं कर पाया तो हम और आप क्या कर पाए? कोई चीज उनकी गलत नहीं निकली। भावजी महाराज साहब ने जब उन्हें बहुत पैसे की सख्त जरूरत थी और हम लोग पंजाब और रेलवे में सिलेक्ट हुए थे, दोनों की तनख्वाह में 150 रुपए का फर्क था, ना आपने ये मना किया कि इंटरव्यू में मत जाओ, ना सब कुछ, जब सेलेक्ट हो गए तो आपने एक सेंटेंस कहा बेटे नाहक मारे मारे फिरोगे, यहाँ रहोगे हमारा भी काम कर दोगे, ईश्वर आशीर्वाद देंगे बुजुर्ग तुम्हें, तसल्ली रखो तो भी लोग सबसे अच्छे रहोगे। और रिटायरमेंट में यूपी की ही तनख्वाह सबसे अच्छी थी। बने आफ्टर रिटायरमेंट जो हाईएस्ट पेस थी उसकी 2.5 गुनी पेंशन बन गई। तो गुरु की कोई बात गलत नहीं होती, बस ये हमारी आपकी कमी है, हमारा मन बीच में शामिल रहता है, जिसको वजह से हमको विश्वास नहीं होता। खाली तीन चीज चाहिए, बेलोस प्रेम चाहिए, कंप्लीट सरेंडर चाहिए और ब्लाइंड फेथ चाहिए। इसके अलावा गुरु आपसे कुछ लेता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है, इसी में जितना समय लग जाए। गुरु खाली दो चीज के भिखारी होता है, एक आपसे समय का दान मांगता कि अपना समय दे दिया हो। लाला जी महाराज साहब कहते थे समय निकाल के बराबर आते जाते रहा, एक निजमन का दान मांगता और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और इससे दयालु क्या हो सकता है कि वो आप ही को नहीं, आपके बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको अपना लेता। हमारे फूफा जी थे जिनका फोटो ये है, ये पूजा भी नहीं करते थे, किसी घरेलू काम की तलाश में, बाऊजी की तलाश में फतेहगढ़ गए, कि वो जानते थे कि बाऊजी फतेहगढ़ ही मिलते हैं। आपने जाके लाला जी महाराज साहब एक कासगंज निवासी फतेहलाल मुख्तार साहब को दीक्षा दे रहे थे, बाबू ब्रजमोहन लाल जी बाहर बैठे हुए थे, आपने उनको हिलाया और पूछा क्या डॉक्टर श्यामलाल जी यहाँ आए हैं। वो अपने ध्यान में थे, उनने उसका जवाब दिया कि मियाँ क्षमा गुल होने वाली है, एक छदाम का प्रसाशा ले जाइए और आप चले जाइए। ये समझे कि शायद कोई परमपता हो, वहां से गए, मार्केट बगल ही में था, बताशे ले आए। जब वो खड़े हो गए तो उन्हें घुस जाओ, जब ही गए तो लाला जी महाराज साहब ने आंखें खोली, उन्होंने कहा आप कैसे आ गए, मैंने तो आपको नहीं मिलाया। उन्होंने साहब ये श्यामलाल जी के छोटे बहन हो, अरे उनका आओ बैठो, जब उनके बहन हुई हो तो हमारे भी अजीज हो गए। ये बात दी लास्ट पर्सन उन्हें दीक्षा दी, न उनने कभी पूजा की न इस ख्याल से गए, लेकिन क्या था कि उन्होंने कहा भाई श्यामलाल के अजीज हो, रिश्तेदार हो तो हमारे भी अजीज हो, और चलते वक्त कहा देखो भाई ये फले फूलेगी उसी घर से, बड़े कट्टर जिन्स आरएसएस के वो थे, गुरु गोलवालकर के बाद नेक्स्ट रैंक में थे। हमारे एक चाचा के लड़के थे, बड़े हंसमुख थे, तो बाबूजी से कहते थे भाई अगर चलता फिरता रामा किसी को देखना तो फूफा जी को देख ले, और सिवा लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं जानते थे, मुसलमानों को मारना, इसको मारना, यही सब करते थे। गांधी जी मर्डर में सब लोग अरेस्ट हुए, ये भी अरेस्ट हुए। देखिए कहां सन 31 में दीक्षा दी गई, कभी उनने पूजा नहीं की, 48 में मर्डर हुआ, तो नेचुरली अरेस्ट के बाद जब बेल हुई तो ये आके हम लोग के घर रहने लगी। उनके आशीर्वाद से लाला जी के बाबूजी की पोस्टिंग भी बुलंदशहर में थी, लिहाजा सिकंदराबाद भी आना जाना होगा। आफ्टर ए गैप ऑफ मंथ एक दिन बड़ी अच्छी हालत थी, हम लोग भी थे, तो उन्होंने कहा भाई श्योती प्रसाद ताऊ जी का आज एक चीज का तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, या तो तुम लाला जी महाराज साहब को भूल जाओ हमेशा के लिए, तुमने कुछ नहीं किया खाली दीक्षा ली, और या आरएसएस को छोड़ो। उन्होंने कहा भाई साहब कुछ टाइम दीजिए, उन्हें कोई टाइम नहीं है, हम लोग छोटे छोटे थे, इनके खिलाफ ही रहते हैं, ताऊ जी बिल्कुल टाइम मत दीजिएगा, और नहीं तो हम पुलिस को खबर कर देंगे, हमारे यहाँ छिपे हुए हैं, अरेस्ट किया जाए। वो हालत ऐसी थी, उन्होंने कहा बस साथ से हम फिर ताऊ जी का आप लिख के दीजिए रिजाइन, तुम साहब आप इतना जलील मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, दूसरे दिन साहब पेपर्स में सब जगह आ गए, एंड उसके बाद की वाज ए कंप्लीट चेंज, न बाऊजी ने न कभी ताऊ जी ने बताया कि लाला जी महाराज साहब से दीक्षित हैं। और जब उनने वो छोड़ दिया तो ताऊ जी खुद कहते थे हमारे गुरु भाई, और उनने टिल डेथ 89 की एज तक बराबर भंडारे में, ये खाली एक उनकी वो थी दया का असर था कि जिससे कोई कंसर्न नहीं, ना पूजा की ना कुछ, कि भाई जब उनके रिश्तेदार हो तो हमारे अच्छे। तो हमें सबको भी यही करना है, किस तरह से जो उनने बचाया है वो चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, नहीं हम उनके बायस बदनामी होंगे। जब आप किसी के बायस बदनामी होंगे वो कैसे आपको दया करेगा। पांचवी चीज है जीवन में सबसे ज्यादा सहयोगी और पांचवी दुखी करती, अगर ये पांच हमवार हो जाए तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, ये पांच अगर आपके साथ हैं, इसके लिए तरह तरह का उन्होंने कहा गैर जिंस की सोबत से परहेज करिए। गैर जिंस की एक ग्रॉस डिफिनीशन थी, जो शख्स पूजा न करता हो उसके साथ चाहे वो आपका भाई हो लड़का हो उसके बिल्कुल बातचीत ही नहीं होनी, पर दुनियादारी होनी चाहिए, जितना बचना चाहिए उतना बचा रहे। उनने कहा हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, हक हलाल की कमाई का ये था एहतियात के बाद उन्होंने कहा नहीं, 1/6 हिस्सा गरीबों को दान कर दो, इतनी तुमने मेहनत से की है, हो सकता है ऑफिस में 8 घंटे सिंसियरली काम ना किया हो जो ड्यूटी का था, तो उन्होंने कहा 1/6 हिस्सा आपने, बजाय ये सोचो कौन सा हक कटा था कौन सा हलाल का था। हक हलाल का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्वत ही लेते हो, ये भी है अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं, तो उनका इतना हिस्सा गरीबों को दान कर दो। ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों को आपने कह दिया कि हमने दे दिया। जो नीडी है, नीडी में सबसे ज्यादा विधवा होती है, फिर इतनी बच्चे होते हैं, यानी एक इन्हीं के रिश्तेदार थे, उन्हीं के शिष्य थे। तो दिन गुरुदेव ने कहा कि बेटी दूसरे के बच्चों को कष्ट दे रही है, तेरी औलाद तुझे कष्ट न दे तो मेरा नाम बदल देना। आवाज आवेश में बहुत तेज, और हमने देखा उन्हीं की औलाद उनके लिए कष्टदायक हुई। तो वो कहते थे बेटे यतीम की आ जो है वो ईश्वर के तख्त को हिला देती, विधवा की वो दुआएं है अनहोनी से होनी कर सकते उनका। इसलिए दोनों अगर कुछ करना है तो सबसे अच्छा ये है किसी यतीम बच्चों को, मुसलमानों में देखोगे हर एक के घर में एक यतीम बच्चा पला रहा है, ये सबसे बड़ी ज़कात है। विधवाओं की मदद करना, लाला जी महाराज साहब ने कई शादी कराई और ऐसी शादी जिनमें लड़ाई झगड़े का भी डर था, वो इन सब चीज़ों से बड़े परहेज रखते थे। लेकिन बाबू जी कह रहे थे एक शादी में बेटे हम लोगों को चारों तरफ से, उन्होंने कहा तुम लोग अलर्ट होके लाठी लेके खड़े रहना अगर कोई वारदात, ईश्वर चाहेगा कुछ नहीं होगा। फिर गरीब आता है, आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए अपनी वाहवाह के लिए किसी को दे दिया, वो दान नहीं हुआ, उसके पीछे आपकी इच्छा छिपी हुई। इन पांच चीजों को साथ में आपको हर एक को लेके चलना कि किस तरह से इन्हें हम अपना, और इसीलिए उन्होंने कहा भाई जगह जगह एक कॉलोनी बनाई जाए जहां 5-5-6 लोगों बगैर सोसाइटी के आदमी नहीं रह सकता। अब उसका यूज मिसयूज हमारे उसमें है कि हमने कैसे किया, लेकिन बेसिक आइडिया यही था जब एक कॉलोनी में 5 आदमी हो गए तो हर वक्त वही वातावरण बना रहेगा उतने एरिया का, एक दूसरे से मिलेंगे, उनके बच्चों के भी वही आदतें पड़ती जाएंगी। ताऊ जी महाराज साहब ने ये जुगादीबाद में है ये कॉलोनी उन्हीं के उससे रामाकृष्ण कॉलोनी के नाम से बनाई, चाचा जी महाराज ने पूरा आर्य नगर की जमीन उन्हें मिली थी जो लोगों को दे दी। तो बेसिस ये नहीं था उनका कि उन्हें कॉलोनी, उन्हें ये था किस तरह से हमारा और आपका हित हो जाए। सत्संग के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें वो हो। सत्संग ही एक ऐसी चीज है, कोई कितना ही कहता रहे वो अपना इमेजिनेशन है, अगर आप सत्संग नहीं करते तो आत्मा कभी पुख्तगी आ ही नहीं सकती, आपका अंतःकरण कभी साफ हो ही नहीं सकता, चाहे कितना ही वो हो आप। ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है, ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अंतःकरण एक आदमी का भी साफ हो जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कि किस तरह से हमारा अंतःकरण साफ हो जाए, फिर वो बच्चा गिल्टी फील करने लगता अपने आप उसको। वो सत्संग का ही किसी का बच्चा था, हम जानते भी नहीं थे, पहली मरते मिला, हमने कहा कहो बेटे क्या कर रहे हो, उसने साहब मैंने MCA कर लिया, उन्होंने बड़ा अच्छा, और उसके बाद चले गए। अभी कुछ दिन पहले वो आया, ना हमने शक्ल देखी ना ये मालूम किसका बच्चा था, लेकिन क्योंकि मन का स्वभाव हो जाता है। शताब्दी से आए तो उनके बेटे खाना खा लो, बोले खाना खा के आए हम, तो उनको इस शताब्दी में तो खाना नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा नहीं माता जी ने हमारे खाना दे दिया था ताकि आप लोगों को कष्ट ना। शाम हुई तो उसने कहा हम खाली एक पर्पस से आए हैं कि हम एक्चुअली आपसे झूठ बोल दिए, हम नए MCA पास हैं और तब से हम सो नहीं पाए और आज भी हम खाना नहीं खा के आए थे, मार्केट पर खा लिया था, मन हमेशा नीचे की तरफ ले जाता। तो उनका सोचने की बात है बेटे, तुम इतना किराया करके शताब्दी से इस बात को जब कहने आए तब भी एक झूठ साथ में कि हम खाना खा के आए हैं, हमका हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, रूटीन हमारा खाने का टाइम भी है। तो अगर अंतःकरण साफ हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज, और ये खाली उन्हीं की सिवा सत्संग के घर का। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि घर की स्त्री का सबसे बड़ी तीन चीज है, घर का वातावरण अच्छा रहे, जिस घर का वातावरण अच्छा रहेगा वहां ईश्वर के नाम की बरकत होगी, उनका उनके बच्चों की देखभाल परवरिश अच्छी करें। माँ मेन रिस्पॉन्सिबिल होती है, बाप कम होता है क्योंकि वो सर्विस में रहते हैं, और उनने कहा उनके घर से कोई भूखा न जाए। बात बाकी उनने कहा बेटे ये पुरुष का काम है कि अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा स्त्री को दे, स्त्री की बस तीन ही ड्यूटी है कि घर के वातावरण को अच्छा बनाए रहे, बच्चों की देख रेख अच्छी करे, उनके घर से कोई भूखा न। बाबू राम नारायण जी बैठे हैं पुराने लोग, इनने चटनी से भी रोटी खाई है लेकिन भूखा नहीं किया। माता जी हमारी पानी पी के रही है लेकिन ये नहीं कह सकते किसी बार वाले के कोई कोई भूखा। तो ये सबसे बड़ी बरकत है। नेचर तो एक स्वभाव है आपका, उसको बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक गुण आ जाए तो कोई वजह नहीं इस। प्रैक्टिकल तरीका यही था जो इन सब बुजुर्गों ने, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो कोई वजह नहीं कि जब हमारे बुजुर्गों के हाथ इतने मजबूत थे और उनने हमारे हाथों को देखिए उसको गौरव को दिखा रहे थे। बाबूजी ने अपनी डायरी में भंडारे में लिखा है कि मैंने देखा लाला जी महाराज साहब बड़े खुश होके सेठ के गले में माला पहना दी उनने और सब पे फूल, मेरे सब आदमियों को कबूल कर लिया, लेकिन वक्त आखिर तक दिन ही मेरे साथ। यानी ऐसी कोई भाई साहब को बीमारी नहीं थी जो ये अपेक्षा की जाती थी उनका वापसी है। और वो पहली थी चीज थी जो हमने उनकी डायरी में पढ़ी, तब ये हाल हुआ। उनका देखो बेटे, मैंने वो विद्या अपने आदमी में भर दी है, लौट फेर के तुम ही लोग उभर के आओ। और देख लीजिए 90 तक कुछ लोगों की मोनोपोली की वजह से, जिनने लालाजी महाराज साहब को शिष्यों को उस प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठने दिया, तो ऑटोमेटिक माता जी ने कहा कि नहीं, अब वहां से दिनुआ से बैठे। ये सब बाबूजी के आशीर्वाद का फल था, ये किसी का क्रेडिट नहीं था। तो जब हमारे हाथ मजबूत हाथ ऐसे उनने पकड़ रखे हैं और ऐसे लोगों को सुपुर्द कर दिया है, तो हमें किस बात का डर है? हमें किस बात का डर है? हमें तो ये है कि अपनी जो भी उनकी याद और उनका नाम सच्चाई और ईमानदारी से ले दिया, कोई जीवन में धोखा नहीं, कोई जीवन में धोखा नहीं है। जिन लोगों को इस काम के लिए है सब बांट दिया हमने। दो चीजें होती, ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि साहब आपके बाद कौन काम करेगा, ये जिसको सिलसिले की इजाजत दी जाती है उसकी जिम्मेदारी है। सब बांट दिया कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन एक चीज जो काम करने वाले हैं उन्हें सोचना चाहिए, वो नौकर है, मालिक नहीं है, ना मालिक हो सकते हैं। मालिक एक है, वो ये है लालाजी महाराज साहब हैं, और गाजियाबाद के मालिक एक हैं, वो बाबूजी। वो लालाजी महाराज साहब के, हमारा आपका काम ये है कि हम अपने मालिक के काम को कितनी उससे करें, कितनी अच्छाई से। ये कोई क्रेडिट नहीं है कि समाज समाधियां बन गई, आश्रम बन गई, कुछ नहीं क्रेडिट। ये तो एक भौतिक चीज है, स्थूल की चीज है, ये तो आगे पीछे नष्टी होनी है। बस इसमें दो क्रेडिट है, एक जगह मिल गई हमको जहां हम ईश्वर के नाम को कर सकते हैं, जहां हमें कोई रोक नहीं सकता, और दूसरे ये है कि हमारा पैसा एक सही काम में इस्तेमाल हुआ। हो सकता है यही पैसा किसी गलत काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अतिरिक्त कोई क्रेडिट नहीं है। इसे हम परमार्थी अचीवमेंट नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमने दो आदमियों को भी इस रास्ते पर चला दिए, ये परमार्थिक अचीवमेंट है कि वो हमारे, चाहे वो रुके या ना रुके, इसके किसी के हम ठेकेदार नहीं है। लेकिन हमारा काम ये है कि जितना अच्छे से अच्छा हो मालिक के काम को कर, और यही नौकर की सबसे बड़ी ड्यूटी कि किस तरह से, और उसके लिए कुछ नहीं, मदद मालिक करता, हिम्मत आपको करने पर, हिम्मत आपको करनी पड़ती है कहीं भी। लेकिन इन सब बंदिशों को लखीमपुर खीरी के लोग वाकिफ होंगे, मिश्रा जी थे, डॉक्टर चतुर्वसाय जी के बड़े सेलेक्टेड लोगों में से थे। और फैक्ट यही थी कि साहब हमने देखा स्कूट उस पर बैठे चले जा रहे, ट्रैक्टर पर जाड़े में, डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था, सांस का रोग था, आते थे अरे डॉक्टर साहब बस गुरु के काम के लिए गए, दवाई दे दीजिए हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ आए लड़के ने फाइनेंस की कंपनी खोल दी, गाड़ी घोड़ा मिल गया और कहीं के नहीं रहे। माया आखिरी वक्त तक टेस्ट लेती, लेकिन गुरु नहीं छोड़ता। 8-9 साल लापता होने के बाद पिछली साल खबर मिली है कि हाँ साहब वो वहां पर मथुरा भंडारे में गए, भंडारे में जाएंगे फिर निकल आएंगे। तो जब तक आप असल से जुड़े रहेंगे कोई माया आप पर हमला नहीं कर सकती। असल से जुड़े रहने की दो ही चरती है, नाम का जाप करते रहिए, रूप पर ध्यान करते रहिए। यहाँ के बाद रूप खत्म हो जाता है, नाम बराबर रहता है। इसीलिए राधा स्वामियों में नाम की ज्यादा तो ये तो पूरी किताबें हैं, इसके चक्कर मत रखिए। ये तो मोटी सी बात है, जब तक आंख स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, आंख पर पथराई नहीं तो रूप खत्म हो गया, नाम बराबर रहता है, क्योंकि नाम सांस की चीज है। ओम इसीलिए अच्छा है, ओम में किसी इंद्रिय का प्रयोग नहीं होता, खाली सांस का वो होता है। राम नाम नेक्स्ट बेस्ट की है, राम का मतलब पूरी बॉडी में रमा हुआ है, समझे, लेकिन उसमें इंद्रिय का प्रयोग होता है। सांस आखिरी वक्त तक चलती रहती है, आखिरी वक्त जब हम लोग देखते हैं आंख पथरा गई, अब ये नहीं देखता, तब डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि हाँ साहब इस शख्स की मौत हो। तो हमेशा ये दो चीजों का ख्याल रखिए, कभी धोखा नहीं होगा। जैसे कितने ही आप पढ़े हो, कितने ही नोट्स तैयार किए हो, ये नोट की फॉर्म है, लेकिन जब तक इम्तहान नहीं होता तब तक डिक्लेयर नहीं होता कि पास हो गए, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसी तरह जब माया टेस्ट ले लेती है तब सर्टिफिकेट मिलता है। जब आपके साथ आपका गुरु है तो माया जो है इम्तहान में आपको ये भरोसा है कि हमारे ही टीचर हैं, तो वो लड़का और फ्रीली काम करता है, बचा हुआ टीचर देख लेता है, बचा हुआ टीचर देख लेता है कि किस्म है। बचे हुए यही लोग डूबो भी सकते हैं, पांचों आदमी ये भवसागर से निकाल भी सकते हैं। ऐसे भी स्थिति है जिनमें बाप डगमगाए, बेटा फिर खींच के उनको ले आया। ताऊजी के पीरियड में भी देखे, भौजी के पीरियड में भी देखे, कि ऐसे भी लोग हैं। इन पांच को बैलेंस हरेक को करना, जैसे हो अलग अलग हरेक की परिस्थिति होती है, जैसे भी हो इन पांच को हरेक को बैलेंस करना। किस तरह से यानी इतने साल बाद भी यही कह सकते हैं 70% हमको अचीवमेंट हुआ, जब उस 70% में इतनी दया है कि जो सोचा वो हो गया, तब फिर यही सोच लीजिएगा अगर 100% हो जाएगा तो फिर उसमें और आप में मालिक में फर्क। ऐसा नहीं है कि एक आदत पड़ जाए आपकी, आदत एक दिन में नहीं पड़ती, धीरे धीरे पड़ती, इसी की प्रैक्टिस करते रहिए, इसी की प्रैक्टिस करते रहिए। बाबू जी ने एक लाइन में लिखा है कि राम नाम का तांता बांध दीजिए। तांते का मतलब मन को दूसरी चीज सोचने का मौका ही नहीं मिले। तो पहले तो मन को कोई चीज सोचने का मौका ही नहीं मिले, अगर सोचे तो अच्छी चीज के बारे में सोचे, क्योंकि मन का स्वभाव नीचे की तरफ है तो हमेशा बुराइयों की तरफ सोचता है, और जब बुराइयां सोचेंगे तो एक दिन बुराई कर भी बैठेंगे, बुराइयां सोचेंगे तो बुराइयां कर भी बैठेंगे। एब्सोल्यूट ट्रुथ का हमने आपको बता ही दिया कि ठाकुर शिव नरेश सिंह को देख लीजिए, जबकि वो जानते थे कि बाऊजी को भी बुरा लगेगा और ताऊजी को भी बुरा लगेगा, उन साहब हमको दीक्षा आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपसे प्रेम ही नहीं है। अगर डॉक्टर साहब दीक्षा दे तब तो हम ले सकते हैं, फौरन ताऊजी का नहीं, बेटे श्यामलाल अब इनको तुम दो, हमारे सामने दीक्षा दो। तो बाऊजी तो यही कहते थे, पूरब में एक बेटे शेर है, ताऊजी कहते थे बेटे अब तक कोई मर्द पैदा हुआ है तो ठाकुर शिव नरेश सिंह मर्द पैदा हुए, पूरब में कोई मर्द ही नहीं है। क्या था, सच्चाई थी, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और तभी लालजी महाराज साहब कहते थे जहां लोग एंड करते हैं बेलौस प्रेम और सच्चाई, वहां से हम शुरू करते हैं, इसलिए हमारा सिलसिला दूसरों से सुपीरियर है, क्योंकि लोग दया करके दान करके इन सब चीजों को करते हुए पहुंचते हैं, हम प्रेम से शुरू करते हैं और सच्चाई पर आकर रुक जाते हैं। यही एंड दो चीज कि एब्सोल्यूट ट्रुथ होनी चाहिए और उससे प्रेम, दान दो सबसे बड़े होते हैं इस विद्या में, समय का दान और दूसरे निज मन का दान। निज मन का यह है कि आपका अपना कुछ नहीं है, जो कुछ सोच रहे हैं कर रहे हैं वो गुरु के उसमें करें, उससे पूछ लीजिए नहीं पूछते हैं तो अपने कर रहे हैं मन में। बाबू जी कहते थे बेटे सब लोग तय करके लाते हैं कैसा कर ले, हम ठप्पे मोहर की तरह ठप्पा लगा देते हैं फोन, हाँ भाई कर लो। जब हमसे कोई पूछता है तो हमें बराबर ख्याल बना रहता है कि फलाने से हमने ये कहा था और हम उसका कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अदरवाइज खाली ये होता 99% अपनी सब तय करके आते हैं कि साहब हमको ये कहना है, वो कह देता कि साहब हम ये करके। किसी का देख लीजिए, तो कोशिश यही करिए कि किस तरह से हम अपने निजवन का दान कर सकते हैं, किस तरह से हम समय का दान कर सकते हैं। जब दुनिया के काम में आप छुट्टी ले सकते हैं, दुनिया के काम के तो परमार्थ के काम में छुट्टी ना ले तो सिवाय इसके कि मन के मुकाम का है इससे ऊपर नहीं, फिर आगे की व्यवस्था वो कर सकता है। सब गिनती कर लीजिए 32 दिन लगते हैं, खाली हम लोग की इच्छा थी आज तक 32 दिन में भाई साहब भी हट रहे, हम भी रहे, वो भी बड़े बड़े अस्पतालों को कभी अनलीव नहीं ली, खाली केजुअल लीव से ही काम करते ये खाली तैयारी, क्योंकि दृढ़ निश्चय था कि भंडारों में हमें जाना है। क्यों? बाबू जी की वसीयत पड़ी है, उन्होंने कहा मैंने दोनों भाइयों से कह दिया समय निकाल के हरी जगह चले जाएगा। ये उसी के वर्ल्ड की शक्ति थी जो बराबर छुट्टी मिलती है। हमें आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, विशेषकर वो सभी लोग जो कि बाबू जी महाराज साहब से वास्ता किसी फॉर्म में भी रखते हैं, क्योंकि वो उन सब लोगों को परम पूज्य लाला जी महाराज साहब ने के सुपुर्द उनने किया है और उनने ग्रहण भी किया है और ये कहा कुछ भूल गए हो तो हमें बता दो। बाबू जी की तरह जीवन अगर उनको मानते हैं, देखिए उनने अपने जन्म भूमि का ऋण चुकाया, पहली जो लिस्ट है जो ताऊ जी महाराज साहब से दीक्षित है वो सभी हमारे गांव वालों की है। उनने अपने परिवार का ऋण चुकाया, हमारे दोनों फूफा जी जो हैं वो लाला जी महाराज साहब से दीक्षित हैं, हमारे चाचा जो हैं वो दोनों जो हैं ताऊ जी से दीक्षित हैं, वो ज़्यादा सुधार। हम लोग जो हैं हम जिज्जी सेठ भाई साहब हसन ये चार आदमी ताऊ जी से दीक्षित, ये परिवार का ऋण था उनका, ये परिवार का ऋण था। ये लल्ला नन्नू इतना फेल होते रहे पढ़ाते रहे, ये फादर का ऋण था कि बच्चों की हैसियत से, यानी उनको दोपहर रोटी का भरोसा नहीं था, ये 10-10 साल फेल होते, उन्होंने कहा नहीं बेटे बहसियत बाप मेरी ये ड्यूटी है कि इनको छत दूँ और दूसरी, और उसके बाद उनने कभी पूछा भी नहीं तुम बेटे क्या करते हो कैसे रहते हो। तो सब ऋण उनने चुकाए, कोई ऐसा ऋण नहीं था कि कोई वो नहीं। आखिरी वक्त तक जब तक तंदुरुस्ती लाऊ की बराबर फतेह हो गए, आखिरी वक्त तक जब तक वो रहे तब तक फतेहगढ़ बराबर चाहते, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन उनको मान रहा है कौन नहीं मान रहा है क्या है। तो जब हम उनको मान रहे हैं हम उनको कर रहे हैं तो हमें उन्हीं की तरह हर ऋण को चुका के और उन्हीं की तरह बनना चाहिए, ये देख लीजिए। और इसीलिए हम बराबर कहते हैं ताऊ जी से तो प्रेम था, ना गुरु की हैसियत से, बस ये था पता नहीं क्यों प्रेम था है और रहे। लेकिन बाबू जी की सब एडवर्सरी में हमने उनको हर चीज में सहूलियत से एडजस्ट करके प्रैक्टिकल वे में देखा कि हर दिक्कत को उन्हें बड़ी सहूलियत से मिली। जीवन भर हमने उनको कभी ये जब हम लोग बैठते थे तो सोचते थे बेटे कभी इनके लाइफ में कभी सुख है कि नहीं। अब आप ये सोच लीजिए मेडिकल के पास करके आ रहे हैं इतने साल से माँ इंतजार कर रही है और कुल 1 किलोमीटर पहले से आप काट लेता और डेथ हो जाती है, हाउ मच शॉक्ड ही विल बी शॉक्ड। लेकिन लाला जी महाराज का नहीं बेटे ये दुनिया है, बच्चा पहली औलाद वो भी लड़का तब कोई बीमार है ऑल ऑफ ए सडन डेथ हो जाती है। इस सब चीजों को वो करते हुए बस एक उनका था बेटे सब चीजों को लाला जी महाराज साहब की बड़ी तैयारी, पता नहीं बेटे उनने क्या हमें देखा उनको आशीर्वाद दिया हम तो बराबर बने। तो जब ऐसे बुजुर्गों का हमारे ऊपर हाथ है तो हमें ये देखनी चाहिए हम अपने कैसे, कौन सी हमें कमी है जिसकी वजह से हम उनके बताए हुए असूलों को नहीं फॉलो कर, उन्हें दूर करते चले जाइए, उन्हें दूर करते चले जाइए। देखिए उनने कहा, यानी जब शुरू हुआ था तो 11 आदमी थे, बाद में हॉल तक आ गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम ये देख रहे हैं कि बेटे हॉल नहीं, सड़क तक आदमी है, और फिर ये भी खाली हो गया और हम लोग खेत में बैठ के पूजा कर रहे हैं वर्चुअली। वहाँ भी खेत है, यहाँ भी खेत है। उनका इतना आदमी आएगा, और ये आपको फैक्ट बताएं, आने वाले जनरेशन में ये इतना आदमी आ जाएगा कि वाकई में उन लोगों को संभालना मुश्किल। ये उनने अपनी उसमें लिखा है कि आने वाली पीढ़ी में इतना आदमी आएगा जिसका संभालना मुश्किल हो जाए। हमने भी अपनी टीम तैयार की है 15 आदमी की, और उम्मीद है ये बच्चे हम लोगों से अच्छा काम करके दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है, उनसे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद है और वो हम लोगों से अच्छा काम करके दिखाएंगे। कोशिश हमारी यही देने चाहेंगे कि कौन सा हम काम कर रहे हैं जिससे उन्हें खुशी, और कौन कोई हमसे ऐसा काम ना हो जाए जो उनको भाई से नाराज की। जितना दो चीज को साथ रखिए कोई धोखा नहीं, और जब तक आखिरी सांस रहे तब तक बराबर ये ईश्वर का काम करते। खाली रहेगा मन को कभी खाली मत रहने दीजिए, मन का स्वभाव नीचे की तरफ भागने का है, वो रहेगा नीचे की तरफ भागेगा। तो सबसे अच्छा है ईश्वर का काम करते, यही लाला जी महाराज साहब ने लिखा, हम ऐसा काम करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त न होने वाला ईश्वर का काम। वो न कर पाए तो कोई अच्छा काम कर दिए, अच्छा काम तब कर पाएंगे जब पहले अच्छा सोचें आप। तो अच्छा सोचते रहिए, हम किसका भला कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो, फिजिकली भी हम भला कर सकते हैं। कोई आदमी पढ़ा लिखा है गरीब बच्चों को पढ़ा सकता और दूसरों की मदद कर सकता है जिस पर पैसा है, फिजिकली कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, और नहीं है तो कम से कम उसका ख्याली तौर पर जो प्रार्थना हम रोज करते हैं वही सच्चे दिल से कि वाकई में प्रभु जो दुखी है और करते रोज है हम लोग के सबका भला करो, तो उन्हीं के लिए सच्चे दिल से रोज प्रार्थना करते रहे कि जो दुखी हैं उन्हें किस तरह से आप। तो कोशिश यही करिए, दो चीज का दान दे दीजिए, निज मन का दान दे दीजिए, समय का दान दे दीजिए, इन पांचों चीजों को बैलेंस कर लीजिए। और एंड यही है कि अच्छे इंसान बनके तमन्नाओं की जेब खाली, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना मोक्ष चाहिए ना कुछ चाहिए, हम और हमारा प्रीतम हो और हमें किसी चीज की पूर्ण। ईश्वर सबकी मदद करेगा, हमारे ऐसे बुजुर्गों ने हाथ पकड़ा है, उनके हाथ ऐसे मजबूत हैं कि जो सिलसिले की कड़ी, इसीलिए दो को मजबूती से पकड़े रही। लाला जी महाराज साहब को बहुत कोई वजह नहीं, और लोग आके आशीर्वाद देते, सबके चक्कर में रहेंगे तो किसी के नहीं होंगे, सबके नहीं हो सकते, एक के होना पड़ेगा पहले, उस एक के होंगे सब आपको अपनाएंगे। शादी एक से होकर जाती है, पूरा परिवार उसे अपना लेता है, दोनों साइड के लड़के वाले भी लड़की वाले भी, शादी तो एक हुई। तो इसी तरह जब एक की आप हो गए तो पूरा परिवार जो सत्संग का है बुजुर्गों का, वो आपको हरेक अपनाएगा, लेकिन तब अपनाएगा जब हम पात्र बनेंगे, बगैर पात्र बने नहीं अपनाएगा, बगैर पात्र बने नहीं अपनाएगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर वही होता है साहब, हम इस घर में इतने दिन रहे, हम तो उनकी औलाद में से थे, उन साहब हमारे तो वो रिश्तेदार थे, अयोध्या प्रसाद जी लाला जी महाराज साहब के दामाद थे। एक बार तो उन्होंने कहा साहब आपने सबकी तरफ ध्यान दिया, अपने बच्चों की तरफ आप लिख रहे थे एकदम से, वो उनका दिक्कत हुई थी, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी समझ के विद्यालय मुझसे लेनी चाहिए, ये विद्या रिश्तेदारी को नहीं दी जाती। काश वो अगर एक पढ़ते भी सच्चे दिल से आते तो देखते मैं उन्हें माला माल कर सकता था। समझे? तो कोई भी शख्स हो जब तक आप पात्र नहीं बनेंगे, चाहे उसी घर के क्यों ना हो, कोई भी नहीं देगा, वो हमें बनना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों से कोशिश यही करिए, जब हम एक रास्ते पर चल दिए हैं, ये पर्व इसीलिए मनाए जाते हैं कि किस तरह से है हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य हमारा यही है जो के परम पूज्य लाला जी महाराज द्वारा, उनको देखिए जिनने इसको प्राप्त किया, उनके बारे में मत सोचिए जो के रास्ते से भटक।